जल मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर हमने सुनी है ऐसी कहानी, है ना कहीं पर किसी की जुबानी। हो रूह पे मेरे रंग रूहानी, ऐसे चढ़ा जैसे बारिश का पानी। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर प्यार का ऐसा मौसम है आया, सारे जहां में बिखर ही गया। हो जिंदगी मेरी ऐसी है बदली, ज्ञान गुणों से मैं संवर ही गया। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। प्रभु की नजर का हुआ है असर, प्रभु की नजर का हुआ है असर।
ओम शांति। हम सब पर किसका असर हुआ है? प्रभु की नजर का असर हो गया। स्वयं भगवान की नजर हम सब आत्माओं के ऊपर पड़ी है और हम सब खुशनसीब आत्माएं हैं जिन पर भगवान की निगाहें, भगवान की नजरें पड़ी। पूरे संसार में असंख्य आत्माएं हैं लेकिन हम गिनी चुनी आत्माएं हैं जिन पर भगवान की दृष्टि आकर ठहर गई और भगवान की दृष्टि से हम सब धन्य धन्य हो गए। संसार में तो खुश नसीब की परिभाषा अलग अलग तरीके से व्याख्यान करते हैं। कोई कहते हैं जो बहुत रिच हो वो बहुत खुश नसीब है, जिसके सारे संबंध अच्छे हो वो खुश नसीब है, जो कभी बीमार ना हो वो खुश नसीब है। तो खुश नसीबी के अलग अलग परिभाषा है लेकिन बाबा ने आज खुश नसीबी की परिभाषा अलग तरीके से परिभाषित की है। जिसके जीवन में ज्ञान गुण शक्तियां समा जाएं, स्वरूप में दिखाई दे, वो खुश नसीब आत्मा है। और वास्तव में ये तो हमारी निजी संपत्ति है, ज्ञान गुण शक्तियां। हमारी मूल प्रवृत्ति है, ये जो हमारे मूल संस्कार हैं जिनसे हम बहुत दूर हो चुके हुए हैं, तो बाबा हमें उनसे बार बार स्मृति दिलाते हैं उन संस्कारों की, ताकि हम निरंतर उनका स्वरूप बन सके। तो ये लंबे समय की एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है। जब तक हम वो अभ्यास नहीं करते हैं, अभ्यास और अटेंशन, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, बहुत धीमा परिवर्तन होता है। तो तीव्र गति से अगर हमारे जीवन में परिवर्तन हम स्वयं देखना चाहते हैं, तो अटेंशन भी उतना बारीकी से रखना पड़ेगा। तो इस संगम युग, छोटा सा युग बाबा कहते हैं, अगर इस संगम युग में हम खुश ना रहे तो खुश नसीब नहीं कहेंगे। तो हम सभी अपनी जांच करें, क्या हमेशा हम खुश रहते हैं? एक है अल्पकाल की प्राप्तियों की खुशी रहती है, दूसरा है हर परिस्थिति में हम खुश रहते हैं, चाहे पास में कुछ है या नहीं है, क्योंकि स्थूल साधनों में खुशी नहीं है, अल्पकाल की खुशी है। लेकिन जो अविनाशी संपदा है, अविनाशी जो संपत्ति है, वो है ज्ञान की संपत्ति, गुणों की संपत्ति, शक्तियों की संपत्ति। अगर इस संपत्ति का हमारे जीवन में अभाव है तो खुशी भी उतनी कम ही रहती। इसलिए ज्ञान, गुण, शक्तियां, बाबा कहते हैं इन सब में खो जाओ। लेकिन खोना कोई सहज काम नहीं है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। हम भगवान के महावाक्य सुनते सुनते लंबे समय से सुनते रहते हैं, लेकिन वो हमारे स्वरूप में आ जाएं तो ही हम सच्ची खुशी का अनुभव करेंगे। और वो स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई हैं, आज की मुरली में बताई हैं कि कैसे वो सारे ज्ञान, गुण, शक्ति हमारे प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई दें, आचरण में दिखाई दें, हमारी दृष्टि में दिखाई दें, हमारे चेहरे में उनकी झलक दिखाई दे। और ये मुश्किल नहीं है, आसान भी है, लेकिन आसान को हम स्वयं ही मुश्किल बना देते हैं। जो चीज नेचुरल होती है, सदा होती है, वो मुश्किल नहीं होती है, लेकिन उस पर थोड़ा गौर करनी पड़ती है। तो पहले हम देखेंगे इस ब्राह्मण जीवन में खुश नसीब कौन है। खुश नसीब आत्माएं वो हैं, आज की मुरली के अनुसार भी कुछ चिंतन, कुछ अलग से चिंतन किया, जो अपने मूल स्वरूप में स्थित रहते हैं, आत्म अभिमानी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि सारे विकारों की उत्पत्ति देह से उत्पन्न होती है, आत्मिक स्थिति से नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो सारे विकारों की उत्पत्ति होती है, धीरे धीरे उनका प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए ब्राह्मणों में वो खुश नसीब हैं जो निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, भले बार बार विस्मृत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने को अगर जागृत करते रहते हैं तो वो खुश नसीब है। तो हमें स्वयं की भी जांच करनी है कि क्या हम उस प्रैक्टिस के लिए तत्पर रहते हैं, उस प्रैक्टिस के लिए थोड़ा अटेंशन रखते हैं, जागरूक रहते हैं, या सारा दिन हमारा बॉडी के इर्द गिर्द ही संकल्प घूमते रहते हैं देह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आवश्यकताओं तक संकल्प चलना ठीक है, लेकिन आवश्यकताओं से अधिक संग्रहण करने का संकल्प जो करना है वो हमारी शक्ति को नष्ट कर देता है। जितनी जरूरत है उतना तो आवश्यक जरूरी है, लेकिन अगर हम अनावश्यक संग्रहण करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा हमने संरक्षित करके रखी होती है वो सारी साधनों में चली जाती है। सब महसूस करते होंगे, जिस कमरे में आप रहते हैं, घर में रहते हैं, जिन चीज़ों का हम लंबे समय से उपयोग नहीं करते हैं ऐसे पड़ी हुई हैं, उनमें हमारी एनर्जी जाती रहती है। अगर उन चीज़ों को हम हटा देंगे, दूसरों की मदद के लिए दान कर देंगे, तो हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए जहां हम रहते हैं बड़ा कम सामान होना चाहिए, वहां स्वच्छता होनी चाहिए। ऐसे अव्यवस्थित रूप से कई चीज़ें घर में पड़ी हैं, स्वच्छता नहीं है, तो बार बार मन जाता वहां, क्योंकि हर चीज़ से हमारे संकल्प जुड़े हुए हैं। जो भी चीज़ हमने घर में एकत्रित करके रखी है वो भी हमारी संकल्प शक्ति है, और अगर हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो संकल्प शक्ति हमारी वहाँ नष्ट हो जाती है। इसलिए तो सबसे पहली बात हमने देखी कि जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का प्रैक्टिस करते हैं उतना स्वयं को खुश नसीब अनुभव करेंगे, नहीं तो अपने भाग्य को कोसते रहेंगे कि मेरे पास घर में सब कुछ है, रिश्ते नाते भी ठीक हैं, लेकिन पता नहीं मेरा कैसा दुर्भाग्य है, जीवन में खुशी नहीं है। तो पहली प्रैक्टिस आत्म मानने की। दूसरा, खुश नसीब वो आत्माएं हैं जिन्होंने जीवन में बहुत दुआएं जमा की हैं, जिनको जीवन में दुआएं जमा करने की कला है, जिनको जो वरदानों से भरपूर हैं, जो कैसी भी आत्माएं हैं हर आत्माओं को दुआएं देते हैं, चाहे वो समय पर सहयोग करते हैं, चाहे अपने मीठे बोल के माध्यम से किसी को उत्साहित करते हैं, किसी के दुख दर्द सुनते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, अपना समय देते हैं। तो जिन्होंने दुआएं जीवन में जमा की हैं वो बहुत खुश नसीब आत्माएं हैं। तो हम देख रहे हैं कि अपने जीवन में हमने कितनी दुआएं जमा की हैं, हमें स्वयं की भी जांच करनी है। और दुआएं जमा करने के बहुत सारे स्रोत हैं, मनसा सेवा करना भी बहुत बड़ी दुआएं हैं, समय को सफल करना ही बहुत बड़ी दुआएं हैं, ज्ञान चिंतन करते हुए वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना ये भी बहुत बड़ी दुआएं हैं। अगर कोई हमारे संग में आ जाए और खुशी का अनुभव करे तो ये भी जैसे दुआएं मिलती हैं। तो जिन्होंने अपने जीवन में बहुत दुआएं एकत्रित की हैं वो भी जैसे बहुत खुशनसीब आत्माएं हैं। तीसरा है, जो निरंतर परमात्मा छत्रछाया में रहती हैं वो बहुत खुशनसीब आत्माएं हैं। नहीं तो दूसरी छाया माया की छाया भी बहुत होती है। आज बाबा ने कहा ना, निरंतर साथ का अनुभव करो, सवेरे से लेकर शाम तक हम कुछ ना कुछ तो अनुभव करते ही रहते हैं, चाहे देहधारियों के अंग संग का अनुभव करते हैं, या किसी की बातें हमारे मन बुद्धि में घूमती रहती है, या किसी ने या अपने ही पुराने संस्कार उनकी छत्रछाया हमारे सिर पर घूमती रहती है, उनके पुराने विकर्मों का बोझ ही छत्रछाया बन के हमको दबाता रहता है। तो हम निरंतर अगर परमात्मा छत्रछाया में रहते हैं तो अपने आप को जैसे सेफ अनुभव करते हैं। आज की मुरली में था ना, साथ और सेफ, साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो अगर हम छत्रछाया का अनुभव करते हैं तो जैसे हम सचमुच खुश नसीब आत्माएं हैं, जो दृढ़ता से अपने इरादों को मजबूत बनाते हैं, अर्थात अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति एकाग्र रहते हैं, जागृत रहते हैं, उस पर चलने में हौसला नहीं कभी खोने देते, वो बहुत खुश नसीब आत्माएं हैं। ऐसा नहीं, इस ब्राह्मण जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी, कई तरह के विघ्न आएंगे, लेकिन वो विघ्न हमको स्पर्श नहीं करें। परिस्थितियां तो आनी आनी है, लेकिन परिस्थितियां भी हमको मजबूत बनाती हैं, परिपक्व बनाती हैं, उनसे लड़ना नहीं है। परिस्थितियों को टच किया तो हमको पकड़ेंगी, साक्षी होकर उनको देखना और समझना है उनको। जैसे एक नदी में दो पेड़ के पत्ते गिरे तो एक पत्ता बहुत निरहंकारी था और एक पत्ता थोड़ा अहंकार था उसको, तो नदी में बहते बहते उसने सोचा कि मैं आज तो इस नदी को रोक कर छोड़ूंगा, और पत्ते की ये सोच नदी को उसका उसको असर ही नहीं है, नदी में तो कई चीजें बह रही हैं, लेकिन पत्ता अंत तक नदी के अंतिम शोर तक यही सोचता चला गया। अर्थात उसने जीवन में प्रसिद्धि तो आई लेकिन उसने दुख में सारा जीवन बिता दिया, दूसरों को रोकने में सारा जीवन था लेकिन रुका नहीं। उसकी तो अपनी अपनी ताकत है, नदी की अपनी ताकत है, पत्ते की क्या ताकत है, क्या बिसात है उसकी। तो हम परिस्थितियों को पकड़ते रहते हैं, तो सारी उसकी जो यात्रा है दुखदायी यात्रा रही, पीड़ाग्रस्त रही। और दूसरा पत्ता था, वो सोच रहा था कि नदी को तो मैं अंतिम शोर तक पहुंचा के रहूंगा, मैं इसकी मदद करूंगा। अब नदी तो उससे भी कोई असर नहीं है, नदी तो चल ही रही है, लेकिन उसने अपना सफर आनंददायक सफर रहा, उसका खुशी भरा सफर रहा। क्यों? क्योंकि मैं नदी की मदद कर रहा हूं, हालांकि वो कर नहीं रहा है लेकिन उसका संकल्प उसको वो खुशी दे रहा है। तो एक है जो उस परिस्थिति से लड़ रहा है, और दूसरा पत्ता जो उस परिस्थिति से लड़ नहीं रहा है उसका एंजॉय कर रहा है, वो उसको सहायता कर रहा है। हम भी जीवन यात्रा में कई प्रकार की इस तरह की नदियां आती हैं, हमारे संकल्प रूपी पत्ते कहीं ना कहीं कोई अहंकारवश कोई संकल्प चला जाता है तो हमारी सारी यात्रा कि उसमें क्या हो जाती है, खट्टी यात्रा हो जाती है, उदास भरी हो जाती है, निराशा भरी हो जाती है। और उन्हीं परिस्थितियों से साथ हम चलते रहें, अर्थात हम अपने आप को एडजस्ट करके चलते रहें, उन परिस्थितियों से समझे, तो हमारी यात्रा आनंददायक होगी, खुशी भरी होगी, उत्साह भरी होगी, उमंग उत्साह भरी होगी। तो हमें जीवन में परिस्थितियों को समझना है, उनसे लड़ने का प्रयास नहीं करना है। बाबा ने कहा ना, रास्ते में पत्थर तो आएंगे, तोड़ो नहीं उनको, क्या करो, साइड से निकल जाओ, नहीं तो जंप दे दो, उनसे लड़ो नहीं। ऐसे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, उनके में उनके बारे में लंबा चौड़ा चिंतन करना नहीं है, हाँ अर्थात वो उसको पकड़ के नहीं रखना है, समाधान तो करना ही है उनका, लेकिन जीवन में जो परिस्थितियां आ गई समाधान कर दिया, फुल स्टॉप, खत्म हुई। क्योंकि उस परिस्थिति से अगर हम कुछ सीख जाएंगे तो आने वाले समय में जो बड़ी परिस्थितियां आएंगी उनका सामना करने में भी हम सक्षम हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। तो हर परिस्थिति से हमको क्या करना है, कुछ सीखना है, उनमें खुशी से अपने जीवन यापन को, अपनी जीवन यात्रा को सुखद बनाना है। तो जो खुशनसीब आत्मा है दृढ़ता से परिस्थितियों में भी अपने को अचल अडोल रखती हैं, तो जैसे खुशनसीब आत्मा है अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहती हैं, जैसे वो खुशनसीब आत्मा है। और खुशनसीब कौन है, जो अपनी भावनाओं का कदर करते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। बाबा ने क्या कहा आज, भगवान को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं, भावना वाले गरीब बच्चे अच्छे लगते हैं, देवान वाले नहीं है। तो हमारी भक्ति काल में अगर देखें तो भक्ति काल में हमारी कितनी बड़ी भावनाएं थी भगवान के प्रति, घंटों घंटों कितनी उतनी भक्ति पाठ पूजा करते थे, कीर्तन करते थे, भजन संध्या करते थे, भक्ति मार्ग में कितनी यात्राएं की, कितने धक्के खाए। तो भगवान के प्रति जहां भावना होती है वहां दुख या कष्टकारी जो परिस्थितियां हैं वो भी क्या लगती हैं, कुछ भी नहीं लगती हैं वो भी। तो हमारी इस ब्राह्मण जीवन में भी भावनाएं बहुत शुद्ध होनी चाहिए, उच्च कोटि की भावनाएं होनी चाहिए। तो जिन ब्राह्मण आत्माओं की भावनाएं बड़ी ऊंची हैं, शुद्ध हैं, प्योर हैं, कल्याणकारी हैं, वो जैसे बहुत खुशनसीब आत्माएं हैं। तो क्या हमारी भावनाएं ऐसी हैं, ये स्वयं को हमको चेक करना है कि हमारी भावनाओं में क्या हो, कल्याण भरा हो, हमारी भावनाओं में प्योर वाइब्रेशन हो, हमारी भावनाओं में उमंग उत्साह भरा हो, हमारी भावनाओं में दूसरों के लिए खुशी का संचार करने के मुख से वो बोल प्रकट हो। तो क्या हमारी ऐसी भावनाएं हैं, और जो हमारी मानसिक भावनाएं हैं मुख से वही निकलता है, दूसरे बोल नहीं निकलते, बनावट के बोल को कितने भी बोले लेकिन जब प्रैक्टिकल में धरातल पर आते तो नेचुरल वही चीज होती है जो हमारे अंदर में है, वही मुख से निकलता है। तो हमारी भावनाएं कितनी शुद्ध हैं वो हमको देखते रहना है, जांच करनी है उसकी कि कितना हमारी भावनाओं में परमात्म शक्ति बरती जा रही है, परमात्म वाइब्रेशन बरते जा रहे हैं, परमात्म प्यार के वाइब्रेशन बरते जा रहे हैं, तो वो हमको चेक करना है। नेक्स्ट है, वो खुशनसीब आत्माएं हैं जो हमेशा उड़ती रहती हैं, जो हमेशा फरिश्तों की तरह उड़ती रहती हैं, अर्श निवासी, फर्श निवासी नहीं, अर्थात जो संकल्पों के स्तर पर जीना सीख लेती हैं, देह के स्तर पर नहीं है, क्योंकि सारा काम हमको संकल्पों के स्तर पर करना है। देह के स्तर पर सारे संसार की सेवा कहां तक करेंगे, कितनों तक, कितनों को संदेश देंगे, कितनों को सुख दे पाएंगे, लेकिन संकल्पों के स्तर पर हम सारी मानवता के लिए जैसे वरदान साबित हो सकते हैं। हर आत्मा के लिए हम उच्च कोटि के संकल्प तो रच ही सकते हैं ना। नहीं तो बाबा ने कहा ना, अपने संकल्पों की उलझन में व्यर्थ का जोश, पिछले संडे की मुरली में था ना, एक संकल्प व्यर्थ आता है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, एक के पीछे एक, दूसरा तीसरा, लंबी लड़ी लग जाती है। तो हमें संकल्पों के स्तर पर जीने की आदत सीखनी है, सेवा करने की आदत सीखनी है, ताकि संसार की हर आत्मा के प्रति हमारा संकल्प बहुत शक्तिशाली हो, पॉजिटिव हो, वरदान भरा हो, उनको राह दिखाने वाला हो, राहत देने वाला हो, दुख दर्द हरने वाला हो। जो बाबा ने कहा सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, मनसा सेवा। मनसा सेवा अर्थात हमारा एक भी संकल्प ऐसा ना जाए जिसमें कोई कमजोरी हो, जिसमें कोई मायावी वाइब्रेशन हो, जिसमें इम्प्योर वाइब्रेशन हो। हमारे हर संकल्प में परमात्म प्योरिटी भरी रहनी चाहिए। तो वो हमको अपने संकल्पों पर भी ध्यान रखना है, तो ही हम जैसे उड़ती कला में उड़ती कला का पुरुषार्थ कर सकेंगे, तो ही हम अपने आप को खुश नसीब अनुभव करेंगे। नेक्स्ट है, जो अपने आप को हमेशा गॉडली स्टूडेंट समझते हैं वो जैसे खुश नसीब है। तो अपने में से कौन कौन गॉडली स्टूडेंट समझते हैं अपने आप को, समझते हैं ना? हम सभी कौन है, गॉडली स्टूडेंट। और स्टूडेंट की निशानियां क्या होती हैं बताओ, पीछे वाले जो पीछे बैठते हैं वो आगे बैठते हैं, वो बच्चे हो के पीछे बैठते, बच्चे हो के तो आगे बैठना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार हम अभी से डाल रहे हैं। अभी से हमने ऐसे संस्कार डाल दिए जिंदगी भर वही संस्कार चलेंगे। इसलिए बच्चों की लाइफ तो सबसे बेस्ट लाइफ है, क्योंकि संस्कारों को परिवर्तन करना बहुत आसान है। अभी जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, शरीर की आयु बढ़ती जाती है, पुराने संस्कार हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। इसलिए माँ बाप बच्चों को संस्कार जन्म से देते हैं। जो आदत एक बार पड़ गई वो जिंदगी भर काम करती रहेगी। तो हमको हमेशा ये सीखना है कि देखो माताएं नीचे बैठी हैं और बच्चे ऊपर बैठे हैं ना, एक सोचने की बात है ना, सीखने की बात है ये। तो हमको गॉडली स्टूडेंट अर्थात क्या, अनुशासित दिनचर्या। गॉडली स्टूडेंट अर्थात जो पढ़ाई के प्रति प्यार रखते हैं, पढ़ाई का रिगार्ड रखते हैं, पढ़ाने वाले का रिगार्ड रखते हैं, पढ़ाई में होशियार होते हैं, पढ़ाई में दूसरों को मदद करते हैं, तो कहेंगे गॉडली स्टूडेंट, खुश नसीब गॉडली स्टूडेंट। अब गॉडली स्टूडेंट तो हम सभी हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन उनमें से भी विशेष कौन है जो स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। दूसरों को पढ़ाना भी बड़ी बात नहीं है, स्वयं को पढ़ाना सबसे बड़ी बात है। तो हम सारे दिन में स्वयं को कितना पढ़ाते हैं, हमारी जो आदतें हैं जो खराब हो चुकी हैं उनको परिवर्तन करने के लिए हम स्वयं के ऊपर कितनी नजर रखते हैं, कितना अटेंशन देते हैं। और वो तभी महसूस होगा जब श्रीमत पर एक्यूरेट चलते रहेंगे, अर्थात भगवान की मदद का अनुभव करते रहेंगे। और भगवान की मदद का या टीचर की मदद का अनुभव कब होता है, जब टीचर जो कहता है वो हम करते हैं। अगर सारे दिन में भी होमवर्क जो मिलता है हमको थोड़ा सा भी करें तो टीचर की नजर अवश्य पड़ेगी। नजर पड़ती तब नहीं है जब हम टीचर का मानते नहीं है, सुन तो लेते हैं लेकिन उसको समाते नहीं है जीवन में, सुना और वहीं का वहीं छोड़ दिया। तो हम गॉडली स्टूडेंट अगर हम अपने आप को समझते हैं तो जैसे हम वाह हमारी खुश नसीबी, वाह हमारे हम खुश नसीब आत्माएं हैं। नेक्स्ट है, जो सदा दूसरों में गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते हैं। हम सब कौन है, होली हंस हैं। तो होली हंस क्या करता है, मोती चुभता है। होली हंस कोई दूसरे के गुणों का प्रचार, अवगुणों का प्रचार नहीं करता है, गुणों का प्रचार करता है। तो हम दूसरों में गुण देख रहे हैं, अवगुण देख रहे हैं, ये सारा हमारी नजर कैसी है, हमें स्वयं जांच करनी है कि स्वयं भगवान ने हम सबको ऐसे टाइटल दिए हैं, वरदान दिए हैं, तो कुछ तो सोच समझ कर दिए ना उसने। तो हम सब उसको एक्सेप्ट, ऊपर से तो सुन सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि सचमुच हम होली हंस हैं, वो इतनी पवित्र आत्माएं हैं। भगवान ने पहचान के तो हमको टाइटल दिया ना कि तुम ही वो आत्माएं हो, ऐसा तो झूठी मूठी तो नहीं बोल दिया। तो हम अगर अपने आप को होली हंस चलते हैं, स्वयं के गुणों और विशेषताओं को भी कार्य में लगते हैं जो हमको परमात्म देन मिली है, प्रभु प्रसाद मिला हुआ है, और दूसरों में भी गुणों को देखते हैं, तो जैसे हम बहुत खुश नसीब आत्माएं हैं। नेक्स्ट है, जो अंतर्मुखी रहना जानते हैं। परसों का स्लोगन था ना, क्या स्लोगन था परसों का, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, जो व्यक्तिगत अटेंशन रखते हैं, है अर्थात अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखकर अंतर्मुखी होकर वायुमुक्ता में आते हैं। ऐसा नहीं वायुमुक्त में नहीं आना, वायुमुक्त तो आना पड़ेगा, लेकिन हमारे मुख से ऐसे बोल नहीं निकलेंगे। अंतर्मुखी अर्थात हम अपने स्वधर्म में स्थित होकर अपनी आंतरिक विशेषताओं को जानकर फिर वायुमुक्ता में आते हैं, अर्थात हमें जो परमात्म देन, वो प्रभु देन विशेषताएं जो मिली हुई हैं, उन विशेषताओं से दूसरों की हम जो सेवा करते हैं उसमें वायुमुक्ता में तो आना पड़ेगा ना। तो हम सभी अगर अंतर्मुखता की स्थिति में रहना जानते हैं और रहते हैं तो हम सभी खुशनसीब आत्मा हैं। तो ये अपना जांच करनी है, ऐसा नहीं मुरली को एज इट रट लेना है, उस पर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। जैसे बाबा ने बोला ज्ञान गुण शक्तियों में खो जाओ, अब उसका अर्थ क्या है, ज्ञान का चिंतन करना पड़ेगा, है ना। हम भी जैसे मुरली तो पढ़ रहे थे, लेकिन मुरली को याद करना फिर भी हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन करना जरूरी है। खुशनसीब अर्थात क्या, तो खुशनसीब अर्थात क्या, खुशनसीब खुशी में रहना। कैसे रहेंगे, जब बाबा ने बोला ज्ञान गुण शक्तियों में खो जाओ, तो ज्ञान में अपने आप को डुबा देना। बाबा सागर है, तालाब नहीं है, बताया ना, सारे खजानों से भरपूर कर दिया हुआ है। तो हम खुश सीब तभी अपने आप को अनुभव कर सकेंगे जब हम अंतर्मुखता की गुफा में रहते हैं। नेक्स्ट है, जब हम हमेशा जागती ज्योत बनकर रहते हैं, होश की अवस्था में रहते हैं, तो हम कहेंगे जैसे खुशनसीब आत्मा है। घटना कब घटती है, जब सावधानी हट जाती है तब घटना दुर्घटना होती है। तो अगर हम जागती ज्योत बनकर रहते हैं अर्थात ज्ञान का नेत्र हमें हमारा सदा खुला रहता है, तो बाहर हम खुशनसीब आत्मा है। तो सदा ज्ञान का नेत्र खुला रहता है कि कभी कभी बंद हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। ये ज्ञान बड़ा सूक्ष्म है, हम खुद ही सोच रहे हैं कि जो बाबा ने कहा अनुभव करो, लेकिन सारे दिन में अगर हम जांच करें 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 24 मिनट भी नहीं हम रहते होंगे उसमें अनुभव। वो ऊपर ऊपर से तो ठीक है, लेकिन अनुभव में खो जाना, उसमें उस सागर में इतना समा जाना कि सचमुच वो अनुभव हो कि जैसे हम परमात्म प्यार में डूबे हुए हैं। तो कहाँ रहते 24 घंटे में 24 मिनट भी, ऊपर ऊपर से तो हम सब कुछ दिख रहे हैं, बाहर से तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने मन पर हाथ रख के पूछें तो हम स्वयं को अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, अपने आप को तो ठग नहीं रहे हैं, अपने आप को श्रापित नहीं कर रहे हैं। कल था ना, माया श्रापित करती है, श्रीमत क्या करती है, श्रेष्ठ बनाती है, और परमत पर चिंतन श्रापित करता है। कल की मूल्य में था ना, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। तो हम अपनी जांच करें कि क्या हम अपने आप को कहीं श्रापित तो नहीं कर रहे हैं, विस्मृत तो नहीं हो जाते हैं, ज्ञान को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। ऊपर ऊपर से ठीक है, हमको ब्राह्मण जमीन मिल गया, बाबा की छत्र है, में सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अंदर का परिवर्तन कहाँ हो रहा है हमारा। हमारे संस्कारों में जो तीव्र गति से परिवर्तन होना चाहिए कौन करेगा। ऐसा ना हो कि जो हम बाद में हमको यही सोचना पड़े कि जो हमको करना चाहिए तो वो तो हमने किया ही नहीं, बस केवल शरीर को सजा लिया, सवा लिया। कल था ना, मलते रहते शरीर को, बर्तन की तरह मांजते रहते हैं कि हम बाहर से तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, ब्राह्मण लग रहे हैं, सब एकदम पर्सनैलिटी भी ठीक दिख रही है, नहीं अंदर की पर्सनैलिटी हमारी कैसी है। हमारा स्वयं की कर्मेंद्रियों पर कितना नियंत्रण है, हमारी स्वयं की दृष्टि के ऊपर कितनी पकड़ है, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर कितना हमारा साम्राज्य है, ये तो स्वयं को जांच करना पड़ेगा। और ये ऊपर ऊपर से नहीं होगा, सहज काम नहीं, ये बड़ा सूक्ष्म रूप से है, उस सागर में डूबना पड़ेगा ये। तो कहाँ थे, कौन थे खुशनसीब, जो ज्ञान का चिंतन करते रहते हैं, जो ज्ञान में डूबे रहते हैं, जो जागती ज्योत हैं। नेक्स्ट है, जो अपनी कमजोरियों का भी चिंतन करते हैं, वो भी खुशनसीब है, अर्थात अपनी कमजोरियों का चिंतन करके उनको निकालने का प्रयास करते हैं। नहीं तो हम रियलाइज नहीं करते हैं, नहीं तो सोच लेते हैं कौन बना, सब में तो कमजोरियां हैं, इतने सालों से चल रहा है, ठीक है, उनको कहेंगे तमो प्रधान पुरुषार्थी। कल था ना मुरली में, सतो प्रधान पुरुषार्थी अर्थात जो श्रीमत पर चल बाप से पूरा वर्षा लेते हैं, माना कुछ भी छोड़ना नहीं है बाबा के पास में, बाबा को एकदम खाली कर देने का, बाबा तो इसलिए बैठा हुआ है कि सब कुछ मेरे से ले लो। वैसे तो बाबा ने दे दिया हुआ है, लेकिन हम भूल गए हुए, पहले ही बताया था ना कि भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है, लेकिन रखा कहाँ उसका पता नहीं है। वो ऐसी हालत हमारी ना हो कि सुन तो हमने सारी मुरलियां ली, पढ़ भी सारी मुरलियां ली, लेकिन पॉइंट क्या है पता नहीं, था कैसा बहुत अच्छा था लेकिन था क्या वो पता नहीं हमको। सवेरे मुरली कैसी थी? बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या था वो बात मत पूछो, उसमें सारा कुछ आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो हमारे पास में, हमारे पकड़ में आए उसकी संपत्ति। इतनी अमूल्य संपत्ति है सारे क्लब में, केवल अभी मिल रही है, भगवान लुटाने के लिए आया हुआ है, और हम फिर उसको पीठ दिखा रहे, तो कितनी बदनसीबी कहेंगे, कितने दुर्भाग्यशाली हो जाएंगे हम। तो हम अपनी कमजोरियों का चिंतन करते हुए उनको निकालने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि कमजोरियां नहीं है, घबराना नहीं उनसे, क्योंकि बीमारियां तो हैं, बीमारियों को उनसे मुक्त होने का हमको उपचार करना है, उनका इलाज करना है, क्योंकि स्वयं सुप्रीम सर्जन हमारे मन की बीमारियों को निकालने के लिए आया हुआ है, ऑपरेशन करने के लिए आया हुआ है। अब सुप्रीम सर्जन ऑपरेशन कर रहा है तो ऑपरेशन खराब थोड़ा नहीं होगा, उसके हाथ से कोई गलती हो सकती है, इस संसार के डॉक्टरों से हो सकती है, लेकिन बाबा तो हमको हमारा ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। वो तो वास्तव में छोड़ दो 21 जन्मों के लिए, अभी के जीवन में जो खुशी है वो खुशी तो ऐसी वहां भी नहीं होगी, जो अभी की खुशी है ऐसी खुशी तो वहां भी नहीं है। अभी के जीवन में खुशी नहीं है तो फ्यूचर के में खुशी रहेगी? स्वर्ग से बढ़कर तो भावने का अभी का संगम युग है, तो अभी का हमारा जीवन एकदम तक गव भार चल रहा है, एकदम बड़ा खींचातान चल रही है, तो फिर स्वर्ग से बढ़कर कैसे जीवन हुआ हमारा? तो बाबा ने स्वर्ग भी कलयुग बन जाएगा, आज की था ना मुरली में, सत्युग भी कलयुग बन जाएगा, तो सत्युग से बड़ा समय तो अभी है, अभी भगवान का साथ है, कदम कदम पर हमारी मदद करने के लिए भगवान दौड़ा चला आता है, वो बाहें पसार रहा है हमारे ऊपर, वो नजर रख रहा है, हमें वरदानों से भरपूर कर रहा है, हमारी पालना कर रहा है, हमको उड़ाने के लिए ज्ञानियों के पंख दे रहा है। तो अभी खुश नहीं होगी तो कहां होंगे फिर? तो अपनी कमजोरियों का जो चिंतन करके निकालने का प्रयास करते हैं, कमजोरियों से घबराते नहीं है, तो जैसे वो खुश नसीब आत्माएं हैं। नेक्स्ट है जो परमात्म प्यार में समाई आत्मा रहती है। परमात्म प्यार किनको मिलता है? जो फरमान बरदार और वफादार आज्ञाकारी, परसों के मुरली में था, हाँ, जो श्रीमत पर चलते हैं, फरमान का पालन करते हैं, और किसको मिलता है? सच्चे दिल पर साहब राजी, जितना हम सच्चाई सफाई से रहते हैं बाबा के सामने, जो हैं जैसे हैं बाबा आपके हैं, चाहे कमजोर हैं कुछ भी है ऐसा नहीं, लेकिन डेली डेली वही वो बात बोलनी है, अपने को थोड़ा चेंज भी करने का है। तो सच्चाई सफाई से हम बाबा के सामने अपना दिल दर्पण रख देते हैं कि ये मैं हूं, जो हूं जैसा हूं आपका हूं आपकी हूं, सच्चे दिल पर साहब राजी है, तो बाबा का प्यार बरसेगा। और प्यार तब मिलता है जब हमारी और उसकी जो मिलन की फ्रिक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए, अर्थात जितना हम निराकारी अवस्था में स्थित रहते हैं उतना निराकार बाप का प्यार अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने कल के वरदान में क्या कहा था, कौन सी जोड़ी अच्छी लगती है? समान वाली रहती है, एक बारी हो एक हल्के तो अच्छा थोड़ा लगेगा, आशिक माशो की उसमें एग्जाम्पल दिया ना। तो हम उसकी फ्रिक्वेंसी जैसे बनते जाएंगे, जितना निराकारी अवस्था का अभ्यास करेंगे, अशरीरी अवस्था का अभ्यास करेंगे, तो उसके प्यार की बरसात निरंतर होती रहेगी, वो महसूस होगा। और जिसने एक बार परमात्म प्यार के स्वाद चख लिया, उसको संसार का कोई भी प्यार आकर्षित नहीं करेगा। अगर संसार की तरफ हमारी बुद्धि उग जाता है, कोई देहदारियों के प्रति, कोई संबंधियों के प्रति, निभाना अलग बात है, लेकिन बार बार एक है लगाव वश, ममत्व मोहवश, तो अर्थात हम जैसे बाबा से दूर हैं, तो हमको बढ़ाना है उसको, अर्थात ज्यादा से ज्यादा निराकारी अवस्था का अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम बाबा के प्यार के पात्र बन जाते हैं, तो जैसे हम खुश नसीब आत्माएं हैं। नेक्स्ट है जो सदा मन मना भव की स्थिति में रहते हैं, मन मना भव के मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, वो जैसे खुश नसीब आत्माएं हैं। तो सारे दिन में बाबा कहते हैं ना, दो मिनट एक मिनट में निकाल कर मुझे याद करो, क्योंकि याद के सिवाय ताकत आत्मा में नहीं भरेगी, याद में ही बल है, याद में ही शक्ति है, याद से ही हमारा कल्याण होगा। सारी मूल्यों को अगर निचोड़ देखेंगे तो उसका एक ही सार है, कौन सा? याद की यात्रा। लेकिन उस याद की यात्रा तक पहुंचने के लिए, उसमें निखार लाने के लिए, उसमें परिपक्व होने के लिए ज्ञान का चिंतन भी उतना करना बहुत अनिवार्य है। तो जितना हम मन मना भव के मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, अपने श्वासों में समा लेंगे, तो जैसे हम बहुत खुश नसीब आत्मा है। नेक्स्ट है जो जितना न्यारा होकर रहते हैं वो खुश नसीब आत्मा है, देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए संबंधों से न्यारे रहते हैं, वो जैसे खुश नसीब आत्माएं हैं। नेक्स्ट है जो सदा आज्ञाकारी आत्मा है वो बहुत खुश नसीब आत्मा है। भगवान की आज्ञाओं का पालन करना कम बात है क्या? कितनी बड़ी खुश नसीबी हम सबकी कि भगवान की आज्ञाओं का पालन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जो आत्मा बहुत प्योर है वो बहुत खुश नसीब आत्मा है। ऐसे बहुत सारी बातें निकाली जा सकती हैं। अब हम मुरली पर थोड़ा चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे आज की मुरली। तो आज कौन किसको मिल रहा है, मुरली कौन सी डेट की थी? 30 तारीख की, आज तो 30 है ना, तो फिर अच्छा पुरानी डेट वाली कौन सी थी, पुरानी डेट रिवाइज डेट कौन सी थी? 17/11/94 है ना। तो 17/11/94 में कौन आया था बाबा से मिलने इधर, आया था कोई? अच्छा 17/11/94 में कोई उसमें थे, हम सभी ब्राह्मण थे क्या? सब उसके बाद के हैं, बहने तो होंगी ना, पीछे वाली बहने हमारी टीचर बहने बैठी है ना, वो तो होंगी ना पुरानी बहने तो कौन मिल रहा है आज, किससे मिल रहा है? प्यार का सागर किससे मिल रहा है? प्यार स्वरूप बच्चों से मिल रहा है। तो प्यार की डोर हमको खींच के ले आए। हम कैसे इधर आए हैं? प्यार की डोर खींच के ले आए। और बाबा भी कैसे आया इधर? बच्चों के प्यार की डोर में खींच के चला आया। और इस प्यार का हमारे पर क्या असर हुआ? जैसे हम परमात्म प्यार में खो जाते हैं जैसे, तो क्या होता है बताओ? अभी बताया बाबा ने, बताया ना मुरली में आज, कई जन्मों का दुख भूल जाते हैं। और क्या होता है, चिंतन को बढ़ाना है, केवल उसको एज इट इज याद नहीं रखना है। जब हम प्यार में समा जाते हैं और क्या होता है, ये देह की सुध बुध भी भूल जाती है, दुनिया भूल जाती है। और क्या होता है, अतीन्द्रिय सुख में समा जाते हैं। और क्या होता है, खुशी का पारा चढ़ जाता है बिल्कुल। और ऐसे पॉइंट लिखने चाहिए तभी तो हमारा कल्याण होगा, नहीं तो चिंतन बुद्धि को कैसे काम करेंगे? बुद्धि तो काम, मन बुद्धि तो सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, अपनी खुराफात तो करते रहेंगे, आदत तो पड़ी हुई है। और क्या होगा अगर परमात्म प्यार में खो जाएंगे? पिछले संडे की मुरली में थे, बहुत सारी निशानियां थी। ये परमात्म प्यार क्या करता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा और स्वभाव मीठा हो जाएगा, देवता ही स्वभाव। परसों की मुरली था ना, जैसे कहीं है तो जैसे देवता ही स्वभाव है, तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा, हमारे संस्कारों में परिवर्तन हो जाएगा, हमारे बोल में परमात्म प्यार समा जाएगा, हमारी चाल चलन में परमात्म प्यार समा जाएगा, हमारी जीवनचर्या ही बदल जाएगी, हमारा जीवन ही बदल जाएगा। परमात्म प्यार की जैसे बरसात का अनुभव करेंगे, तो परमात्म प्यार में समाई हुई आत्माएं रेत में भी हरियाली कर देती हैं। था ना मुरली में एक पीछे, जो आत्मा परमात्म प्यार में समाई होती हैं वो क्या करती हैं, और वो शांति की शक्ति की सदा, हाँ उसमें भी है और प्यार से भी है। तो ऐसे चिंतन को हमको बढ़ाना आगे, नहीं तो हमारी बुद्धि वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। और बाबा ने क्या कहा, संगम युग पर सबसे ज्यादा खुश नसीब कौन है? साधारण आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि भगवान साधारण तन में आते हैं। अगर महाराजा महारानी की आत्मा में आ जाए तो, उनके शरीर में आ जाए तो, उनसे बड़े लोगों से मिलेगा तो हमें कौन पूछेगा फिर तो देखो भगवान भी साधारण तन में आता है, किसके लिए? हम सब आत्माओं के लिए आता है। तो साधारण तन में आना भगवान आता है, और किसके लिए? गरीब आत्माओं के लिए आता है। बाबा ने कहा साहूकारों को तो फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है उनको। तो हम सबका कितना बड़ा भाग्य है, कितना श्रेष्ठ भाग्य है। तो क्या यह भाग्य कि हमको स्मृति रहती है, कि हम संगम युग पर साधारण बनना सबसे बड़ा भाग्य है। नहीं तो जितना पसारा होता है, मन बुद्धि की सारी शक्ति उसी में फंसी रहती है, निकालना मुश्किल होता है। थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा मेडिटेशन में बैठेंगे तो बातें तो वही घूमती रहेंगी, क्योंकि सारा दिन वही बातें बुद्धि में चल रही हैं। तो साधारण रहना ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने आकर हमारा हाथ पकड़ा है, हमें अपना बनाया है, अपनी गोद में बिठाया है, अपनी पलकों में बिठाया है। पलकों वाला प्रदान था ना, स्लोगन था ना, कब का था, क्या था स्लोगन? पलकों वाला 3-4 दिन पहले का था। हाँ, इतने हल्के हो जाओ कि बाप पलकों पर बिठा के ले जाओ, डर संकल्पों से। तो ये हम साधारण आत्माएं हैं, तो साधारण अपने को लेकिन उतना साधारण समझना नहीं है, भाग्यवान आत्माएं समझना। संसार के हम कोटों में से कोई आत्माएं हैं, कितनी कम आत्माओं को हम सबको चुना उसने। और बाप से प्यार की निशानी क्या है? आज की मुरली में प्यार की निशानी क्या है? जिसको जो चीज चाहिए होती है उससे वो मिल जाए, ये प्यार की निशानी है। तो बाबा से हमारी प्यार की निशानी क्या है? बाबा ने हम सबको क्या दिया? अपना सारा कुछ ही दे दिया, खुला खजाना हमारे सामने रख दिया, भंडार दे दिए सारे, है ना। थोड़ा नहीं दिया, इसको थोड़ा दूं, इसको कम दूं। बाबा ने कहा मैं सागर हूं, नदी या तालाब नहीं हूं। तो तुम बच्चे भी मास्टर सागर हो, तो तुम्हारे पास भी जैसे उसके पास में, तुम्हारे पास भी सारा कुछ ही है। लेकिन क्या क्या हमारे पास, वो बात मत पूछो, वही वाली बात आ जाती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो हमको नए जो पढ़ने लिखने की आदत बनानी है, केवल सुनना नहीं है, मुरली को नए नए तरीके से कुछ करो, उसके छोटे छोटे प्रश्न उत्तर बनाओ, उसमें नए शब्द कौन से आ रहे हैं वो बनाओ, बाबा ने समय के बारे में क्या कहा वो लिखिए, अलग अलग तरीके से कौन सा एग्जाम्पल दिया बाबा ने वो लिखिए। तो मुरली को नए तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा नवीनता आएगी जीवन में, नहीं तो एक रस उसी तरीके से चलते जा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। रत्नमोहन दादी जी कहते थे कि चेहरे पर खुशी दिखती नहीं है, जब हम क्लास में बैठते थे तो क्या हो गया आपके चेहरे को, क्या हो गया, मुस्कुराते क्यों नहीं हो। इस उम्र में भी दादियों के चेहरे पर इतनी खुशी, ज्ञान का वो नशा, ज्ञान की पिपासा बनी रहती थी। तो हमको अपना गोल्डी स्टूडेंट माना, कुछ सीखने की एक ललक होनी चाहिए अंदर में। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जान गए हैं, कापी पेंसिल हमारे हाथ में होना चाहिए तो गोल्डी स्टूडेंट कहेंगे, नहीं तो बुद्धि में रहता कहाँ है। उसको लिखो पढ़ो, एक एक मुरली को तीन, हमारे तो मधुबन में इतने भाई हैं जो पूरी पूरी मुरली लिखते हैं, ऐसे मधुबन के पुराने भाई भी हैं, छुपे रुस्तम में पूरी की पूरी मीठे बच्चे से लेकर अंत तक सारी मुरली लिखते हैं। अब कितना टाइम लगता होगा लिखने में, है ना। और कुछ एक सेवादारी है, हमने देखा लंबे समय से लिखते लिखते अभी उतनी उनकी लिखावट इतनी अच्छी हो गई है कि बात मत पूछो, पहले लिखना नहीं आता था उनको। बूढ़ी बूढ़ी माते आती थी, हम देखा वहां मुरली के पास बैठे सारे के सारे पॉइंट लिख रहे हैं, वहां जो कागज ले गए हैं, मांगती नहीं माते हैं, वो लिखती हैं, क्योंकि जो मटेरियल हमको मिल जाता है उसकी वैल्यू नहीं रहती है, जो हम खुद निर्माण करते हैं उसकी वैल्यू रहती है। तो माते वहां लिखना लिखती रहती हैं, तो लिखना एक बहुत बड़ी सेवा रहती है, जो जिनकी उनके ऊपर दृष्टि पड़ती है वो सीख कर चले जाते हैं कि कितनी बुजुर्ग बुजुर्ग माते कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रही। तो पढ़ाई के प्रति बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, पढ़ाई के प्रति हम अलर्ट हैं हमारे सारे मार्ग अपने आप निर्विघ्न हो जाएंगे, हमारा योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग अपने आप लगेगा, क्योंकि योग तो कहीं ना कहीं लगा रहता है। योग लगता कहाँ हमारा, जिससे हमारा प्यार होता है। योग में बैठते हैं बुद्धि कहाँ जाती है, जहां हमारा अटैचमेंट है। तो अगर हमारा ज्ञान से अटैचमेंट है, मुरली से अटैचमेंट है, अर्थात मुरली दर से अटैचमेंट है, मुरली से अटैचमेंट नहीं है अर्थात बाहर हमारी बुद्धि बिखरी पड़ी है व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ के संसार में। तो सबसे पहले पढ़ाई से प्यार करना सीखना है। पढ़ाई तो हमारे मूल संस्कार होनी चाहिए, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान का। बाबा ने कहा उसमें खो जाओ, खोना क्या है, केवल याद करना नहीं उसको, उसका चिंतन करना है, गहराई में जाना उसके, तभी तो ऊपर वाला मदद करेगा, नहीं तो हमें संकल्प कहाँ से आएंगे। हम खाली एकदम शांत स्वरूप आत्माओं सोच के बैठ जाएंगे तो गहरी शांति में चले जाएंगे। उस शांति के लिए कुछ ताकत चाहिए ना, तो ज्ञान का चिंतन करना बहुत अनिवार्य हो। तो बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को सारे खजाने देकर गया हूं, सब खजाने दे दिए, कोई खजाना ऐसा नहीं है। तो खजानों की लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास, कौन कौन सा खजाना हमको कौन से समय में लगाना है। कौन से खजाने मिले हमको बाबा से, सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना, और समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, और दुआओं का खजाना, पवित्रता का खजाना, संतुष्टता का खजाना, संकल्पों का खजाना, बोल का भी खजाना, शक्ति का खजाना, और समय, श्वास, ये सब खजाने हैं। तो खजाना हमारे पास है, ये हमको पता होना चाहिए ना। अगर योग में बैठे केवल ये भी चिंतन करो कि मेरे पास क्या क्या ज्ञान है, जैसे बाबा ने कहा ज्ञान में समा जाओ, तो ज्ञान अर्थात क्या। तो हम शाम को अभ्यास कर रहे थे कि जो बाबा ने कहा सारे दिन में तो आत्मा आत्मा तो बोलते हैं, स्वरूप में नहीं जाते हैं। हम सवेरे मुरली में बैठ के सोच रहे थे कि आज हम आत्मा का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, लेकिन दोपहर तक बिल्कुल ही नहीं हुआ, एकदम भूल गए। दोपहर को जब थोड़ी सी मुरली पढ़ने लगे तो थोड़ी जागृति आई। इतना बारीक ज्ञान है जो हाथ में नहीं आता है, ये कोई साधारण काम नहीं है। विश्राम के टाइम में योग में हमने अच्छी तरह केवल आत्मा का अभ्यास किया और सच में इतना एकाग्र हो गया मन, बीच में एक फोन आ गया तो हमारा मन उसमें बड़ा जरा भी हलचल नहीं हुआ कि ये क्यों हमको बुला रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का जैसे स्वरूप बन चुके थे एकदम। क्योंकि ऐसा नहीं हमको कोई भी सेवा कभी भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि हम योग में बैठे थे खाली योग ही करते रहेंगे, तो हर समय हमारा कर्म ही योग बन जाए आज के मूल्य में इतना कर्म योगी सिद्ध हैं, कर्म करते हुए हमारा योग नेचुरल नेचर हो जाए, तो हमको वो स्वरूप मिलानी आदत। तो बाबा ने कहा ये प्यार की निशानी है कि जो चीज जिसको जो चीज चाहिए होती है वो मिल जाती है। तो बाबा ने हम सबको सारे खजाने दे दिए हैं और सबसे बड़ा नशा कौन सा है कि स्वयं भाग्य विधाता ही अपना हो गया है, भाग्य की कलम हमारे हाथ में दे दी है। बाबा ने कहा अभी कितना लंबा निर्माण करना, कितनी लंबी रेखा खींचने वो आपके हाथ में, तो सारे दिन में क्या कलम हमारे हाथ में रहती है, श्रेष्ठ कर्मों की कलम, श्रेष्ठ संकल्पों की कलम, श्रेष्ठ बोल की कलम, तो क्या हमारे हाथ में वो कलम रहती है, उसका हम सदुपयोग करते हैं या कलम लेके रख दी फिर पता नहीं दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं। तो स्वयं भाग्य विधाता हमारा हो गया, इससे बड़ा नशा कौन सा है। तो सवेरे सवेरे उठ के सोचना है कि भाग्य विधाता के साथ मैं बैठ के बातचीत कर रहा हूं, मेरे भाग्यों को देखकर भगवान इतरा रहा है, खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, डांस कर रहा है, जैसे मेरा मन भी डांस कर रहा है। बाप बच्चों पर खुश होता है ना, अगर बच्चे अच्छी कमाई करे तो बाबा भी हमारी कमाई को देख के खुश हो जाए कि मेरे बच्चे मेरी क्या करते हैं, इनकम को बढ़ा रहे हैं, अपनी इनकम को बढ़ा, बाबा को तो इनकम की जरूरत नहीं है लेकिन अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, तो बाप को भी खुशी होगी ना। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो तो उसके जन्म पत्रिका कैसे लिखेगा, वो खराब लिखेगा। तो स्वयं भाग्य विधाता हमारा बाप है, वो हमारा अपना हो गया है, इससे बड़ा खुशनसी भी कौन सी है। और तो बाबा ने कहा संगम का यो समय जो ना बहुत छोटा समय है, और छोटे समय में क्या होगा, किसको बोला नए नए बच्चों को अलवेले नहीं बनना, अभ्यास और अटेंशन, नहीं तो पुरानों को देकर अलवेले बन जाते हैं। बाबा ने कहा अभी भी आगे जाने का गोल्डन चांस है। तो ये जो हमको मौका मिलता है मधुबन में आते हैं सेवा करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतना समय हमको भगवान की छत्रछाया में रहकर अपना पुण्य दान, अपना इस दुआएं जमा करने का मौका मिल रहा है, परमात्म प्यार का अनुभव करने का मौका मिल रहा है, ऐसा माहौल मिल रहा है। ऐसे माहौल से हम अपने आप को इतना चार्ज कर लें कि हमारे जन्म जन्म का भाग्य का निर्माण अभी हम कर लें। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जितना भी टाइम मिलता है ये साधारणता में व्यतीत नहीं करना, एकदम चरम अवस्था की खुशी होनी चाहिए। सिर से के नाखून से पांव, सिर के नाखून नहीं, पांव के नाखून से लेकर तो आप सुन रहे चुपचाप भी ऐसे, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना हाँ तो ठीक ठाक सुन रहे हैं तो पांव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक क्या होना चाहिए, खुशी रहे, चढ़ी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा खुशी इतनी कि तुम्हारे सिर की नस पड़ जानी चाहिए, बोला ना इस मुरली में हाँ, फिर उसका इलाज बाबा करता रहेगा अर्थात हमारी जो नसें ना खुल जानी चाहिए सारी, तो इतनी खुशी होनी चाहिए। तो मधुबन में आए हैं, मधुबन के महत्व को समझना है, मधुबन की सारी एनर्जी भर लेनी अपने अंदर में, जैसे हमारा जीवन ही मधुबन हो जाए, चलता फिरता मधुबन हो जाए, मधुरता से भरपूर, बन अर्थात वैराग्य से भरपूर, यहां से बाहर निकले घर में जाए तो घर से जैसे संसार से हमारा बेहद का वैराग्य हमेशा बना रहे, और व्यवहारिकता में मधुरता समाई रहे सबके साथ में, तो मधुबन में आने का पूरा फायदा लेना है। तो बाबा कहते हैं ये समय जो संगम युग का बड़ा छोटा सा समय है, इसलिए इसमें अपने आप को फुल चार्ज कर लो, शक्तिशाली बना लो, देखना नहीं किसी को भी, अपने आप को देखना है। हम स्वयं को अच्छा बना लेते हैं ना तो हमको सभी अच्छे लगते हैं, हम स्वयं में कमजोर होते हैं ना तो सबकी कमजोरियां दिखाई देती हैं, सारा चश्मा हमें हम किस कैसा पहनते हैं वो हमारी मानसिकता पर ही डिपेंड करता है। खुद अच्छे हैं सब अच्छे हैं, खुद खराब है सब खराब लगेंगे, ये सब में नुक्ता चीनी निकालते रहेंगे, सबके प्रति ऐसे वैसे बोल निकलते रहेंगे। तो हमारा जीवन जो एक दर्पण की तरह है, हमारी जो आंतरिक भावना है वो प्रदर्शित होती है हमारी व्यवहारिकता से, हमारे बोल से व्यवहारित प्रदर्शित होती है, कि कैसी सामने वाले की मानसिकता है। भले सामने वाला कोई कोई तो बड़े अपने आप को होता है होशियार भी समझते हैं, लेकिन ब्राह्मण सभी होशियार होते हैं। दूसरे वाले को बुद्धू नहीं समझना किसी को भी, सब ब्राह्मण बहुत होशियार होते हैं। हम सोच रहे हैं कि दूसरे को तो हम ऐसे चला देंगे, ऐसा नहीं है। जो आदमी चुप रहता है अंदर से बहुत वो होशियार होता है, वो समय पर बोलता नहीं है लेकिन वहां से सीख जाता है बहुत कुछ। वो भगवान की जिसके ऊपर दृष्टि पड़ी हो साधारण थोड़ा नहीं हुआ। इतने संसार की समझदार, इतनी समझदार आत्मा है, सारी नॉलेज उसने दे दी है, लेकिन बाबा ने कहा वो सहनशील आत्मा है। सहनशीलता बताया ना आज की मुरली में, तो क्या करना है, समय को हमको पूरा सफल करना है। और फिर बाबा ने कहा सदा साथ का अनुभव कौन करेंगे, आत्मा में सदा साथ का अनुभव बच्चे करेंगे। कौन से बच्चे? हम बच्चे करेंगे। हाँ, मास्टर नॉलेजफुल आत्मा है, अर्थात निरंतर हम मास्टर नॉलेजफुल की अवस्था में रहते हैं तो साथ का अनुभव करेंगे। वायदा किया ना बाबा ने, कहा क्या वायदा किया, साथ जिएंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ मरेंगे, मरेंगे अर्थात चलेंगे, मरे तो वही है, हम संसार से तो विस्मृत हो चुके हैं। तो बाबा के साथ रहने का हमने वायदा किया है तो सदा साथ रहने का अनुभव करना है कि निरंतर सचमुच वो इधर ही है। कल क्लास में सुन रहे थे ना, परसों क्लास में, सूरज भाई क्लास में, क्या साइंटिस्ट आए थे, क्या बताया था उन्होंने कि कोई महापुरुष तो इधर घूम रहा है, तो सचमुच ब्रह्मा बाबा इधर ही घूम रहे है ना। एक बार पहले भी सुनाया था, अनुभव शॉर्टकट में सुना देते हैं। एक बार भाई आया था दिल्ली से अपनी फैमिली को लेकर, फैमिली ज्ञान में चलती थी लेकिन वो भाई ज्ञान में नहीं चलता था, वो तो उसकी सास और उसकी मिसेज जबरदस्ती लेके आए। तो यहाँ उसको रहने के लिए बोला, मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तो होटल में रुकूंगा, मुझे यहाँ पर कोई विश्वास नहीं है। तो हमने थोड़ा उसको आग्रह किया, भाई ठीक है आप यहाँ थोड़ा देख तो जाओ, कम से कम आपकी मिसेज और माता जी कहाँ रुक रहे हैं, व्यवस्था ठीक है कि नहीं ठीक है। तो बोला चलो ठीक है देख लेता हूँ। तो जाके कमरे में गया तो थोड़ा सा मन बदल गया, थोड़ा बोला रेस्ट कर लेता हूँ। अब रेस्ट करने लगा धीरे धीरे, तो शाम हो गई। अब शाम हो गई तो शाम के टाइम में वो अपनी गाड़ी लेकर, बहुत महंगी गाड़ी थी, पीस पार्क में घूमने गए। और जैसे घूमने से वापस बाहर आए तो उसकी जो गाड़ी का साइड का शीशा ना किसी ने तोड़ दिया, और वो कम से कम 25-30 हज़ार का होगा, आते नुकसान हो गया और उसका मन खराब हो गया। वो कमरे में आया इधर, तो कमरे में आया तो उसको मन तो पहले खराब था, अब भोजन करने इधर आया नहीं, तो हम तो इधर से जो भी जर्नल में भोजन था हम तो कड़ी और खिचड़ी और दो रोटी लेकर चले गए उसको वहाँ। तो बड़ा भारी मन से उसने खाया थोड़ा। फिर पूछा ये ब्रह्मा बाबा की जो फोटो है, ये फोटो क्यों इधर लगाई है, इस तो शरीर छोड़ दिया तो भूत है, इसको शरीर इधर क्यों लगाया हुआ है। तो हमने बोला ऐसा नहीं है, जो हमको समझ थी हमने सारा बताया कि ऐसे अव्यक्त स्थिति में और अभी इधर ही है, गए नहीं है कहीं। तो बोला ऐसा नहीं होता कुछ भी। तो रात को फिर इधर ही सो गया, फिर सवेरे उठ के आया। तो सवेरे उठ के आया तो मुझे कहता है, मुझे ना रात को एक सपना आया, उसका अर्थ क्या है। तो मैं बोला क्या सपना है, बोला ऊपर से ना एक बहुत बड़ा रथ आया और ये बाबा ऊपर से रथ लेके आया और नीचे लेके मुझे रथ में बिठा के ऊपर ले गया, और ऊपर ना एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, बहुत बड़ा, और एक माता जी बैठे खुले बालों वाली और बहुत सारे सफेद कपड़ों वाले बैठे और यज्ञ चल रहा है, उसमें आहुतियाँ डालते जा रहे हैं। तो हमने उसको अपने तरीके से बताया कि पांच कर्म इंद्रियों का रथ है, जैसे जो बताना था अपने तरीके से बता दिया उसको। फिर थोड़ा सा सेटिस्फाइड हुआ, फिर वापस इधर आया। तो यहाँ से उसको जाना था वापस, यहाँ से आया तो यहाँ शांति स्तंभ के सामने गया, तो यहाँ से जैसे उसने ऐसे टर्न करके देखा तो उसको सामने ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया सफेद कपड़ों में। फिर उसने इधर मुझे बताया नहीं, फिर यहाँ से बाहर गया गेट के पास, गेट के सामने उसको फिर बाबा ने कहा बच्चे जब तक ये यज्ञ पूरा नहीं हो तब तक मैं इधर ही हूँ। तो ये उसने मुझे बताया नहीं उस समय, फिर बाद में मुझे कहता है मैं एक दिन और रह सकता हूँ इधर। तो मैंने बोला ठीक है। फिर शाम को उसने ये बताया कि बाबा ने ऐसे ऐसे मुझे बताया। हालांकि देखो बाहर का व्यक्ति जिसको भी ज्ञान नहीं है वो भी यहाँ अनुभव करे तो सचमुच बाबा इधर ही घूम रहे हैं। तो हमेशा सदा साथ का अनुभव करना है कि बाबा हमारे साथ में, तो साथ का अनुभव। और क्या कहा बाबा ने कि हर बच्चे को बाबा कैसे देखने देते हैं, स्वराज्य अधिकारी, मनसा वाचा कर्मणा कंट्रोल, मन बुद्धि संस्कार पूरा नियंत्रण हमारे ऊपर। और क्या कहा बाबा ने, हर ज्ञान गुण शक्ति का अनुभव। कमजोरी का कारण है अनुभव की कमी, अनुभव नहीं होता है उसका कारण है ज्ञान गुण शक्तियों को हमने अपने जीवन में नहीं लाया। बाबा ने कहा मन में तन से भले आराम से हो, लेकिन मन से आराम है तो तन से भी आराम है। आगे जाके बाबा ने कहा अखंड साधना करनी पड़ेगी, और खुशी की खुराक खाओ, अखंड साधना करते चलो। और क्या कहा, वो बच्चे बहुत लकी हैं जो टू लेट होने से पहले पहुंच गए हैं। लेट तो आए हैं लेकिन टू लेट नहीं आए हैं। और वरदान क्या था? बात मत पूछो, वाणी और मनसा की सेवा कंबाइंड होनी चाहिए तो सफलता मूर्त। बाबा ने कहा जिसको अगर स्थूल करने की सेवा नहीं मिलती है तो मनसा से अच्छी वाइब्रेशन का सहयोग दो। और स्लोगन क्या था? बात मत पूछो। डैश के आसन पर डैश रहो तो डैश डैश रहेंगे। एक रस स्थिति की, हाँ, एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो सदा अचल अडोल रहेंगे। तो ज्ञान के चिंतन को बढ़ाना है, निरंतर बाबा को साथ अनुभव करना है, ज्ञान गुण शक्तियों में अपने आप को समा देना है तो खुशनसीब कहेंगे और प्यार में समाये रहेंगे और समय को सामने देखते हुए पुरुषार्थ को बढ़ाना है, अलविलापन नहीं रखना है, अलर्ट रहना है, गॉडली स्टूडेंट बनकर रहना है और अपने भाग्य का नाज रखना है, देखना है, नशा रखना है कि स्वयं भाग्य विधाता मेरे साथ में है। अच्छा, ओम शांति।